मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के तहत तो हम लोग प्री 2022 के बारे में ही कुछ बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ दूसरी बातें मैं करना चाहूंगा जो समाचार से जुड़ी हुई है। आसियान के बारे में आपने न्यूज में भी सुना होगा और बाकायदे टीवी चैनल्स पर भी उसके बारे में बताया गया था, भले ही थोड़ा सा ही कहा गया कि जो आसियान देश हैं 30 वर्ष उसके पूरे हो गए हैं उसके गठन के, और भारत ने स्पेशली इस लाइन को याद रखिएगा कि 2022 को भारत आसियान मित्रता दिवस घोषित किया है। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, भारत आसियान मित्रता दिवस, यानी कि इस वर्ष में खासकर 2022 में भारत आसियान देशों के साथ अपने संबंधों को और ज्यादा सुदृढ़ करने की कोशिश करेगा। दूसरी बात, जो आगामी अध्यक्ष होगा आसियान का वो कंबोडिया होगा। मैं आपको प्री एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, लेकिन दोस्तों यह संगठन इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। यहां वक्त नहीं है और सच पूछे तो ये वो फोरम भी नहीं है कि जहां मैं आसियान के बारे में आपको बताऊं। हां, ये जरूर कहूंगा कि जो आसियान नामक जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसे आप पढ़ें, इसका उद्देश्य क्या है, कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं, और साथ ही साथ इसके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं, किस किस तरह की उपलब्धियां हैं। G20 बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, जो विश्व के जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो विकसित राष्ट्र हैं इसके सदस्य हैं। जी का मतलब है यहां ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, इसका नाम है G20। इनका शिखर सम्मेलन हो रहा है। शिखर सम्मेलन का मतलब क्या होता है? शिखर का मतलब एपेक्स, एवरेस्ट की चोटी आप कह लीजिए। तो जहां शिखर सम्मेलन शब्द आया तो आप समझ लीजिए कि उस सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे, राष्ट्र के जो प्रमुख होते हैं, सरकार के जो प्रमुख होते हैं, वे भाग लेंगे। सोच करके देखिए कि अगर किसी भी सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्ष जा रहे हो या सरकार के हेड जा रहे हो तो उनके डिसीजन कितने इंपॉर्टेंट होते होंगे, है ना। तो शिखर सम्मेलन बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपको मैंने कल बताया था कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑलरेडी जा चुके हैं, रवाना हो चुके हैं। जो इस बार का जो थीम है शिखर सम्मेलन का, यह भी आपको ध्यान रहना चाहिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है प्री एग्जामिनेशन में भी, और अगर आपको ध्यान होगा तो फिर आप इस तरह की जानकारियों का इस्तेमाल अपने आंसर राइटिंग में भी कर सकेंगे। अब आप देखिए कि इससे यह पता लग जाता है कि अभी हमारी समस्याएं क्या हैं। G20 कंट्रीज अगर कोई अपना थीम बनाता है तो डेफिनेटली वो शो करता है, इंडिकेट करता है कि ये हमारी अभी की सबसे बड़ी आवश्यकताएं हैं। जो थीम है वह है लोग यानी कि पीपल, ग्रह यानी कि प्लेनेट यानी कि ये पृथ्वी, और फिर है समृद्धि। अगर आप इसे थोड़ा सा उलट पलट करके देखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर है, कि यह पृथ्वी भी बनी रहे और हमारा विकास भी होता रहे और हमारे लोग भी खुशहाल हो सके। क्योंकि देखिए, हो सकता है कि समृद्धि तो आ जाए लेकिन लोग गरीब बने रहें। जैसे असमानता पर ही देखिए, मैं आपको अभी एक डेटा दे रहा हूं, ये डेटा आपको नोट कर लेना चाहिए कि जो 2022 है उसका वैश्विक असमानता रिपोर्ट उसकी अभी आनी है, लेकिन उसके टुकड़े टुकड़े आने शुरू हो गए हैं। उसमें यह बताया गया है, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेटा बता रहा हूं और ये आपको नोट कर लेना चाहिए। ये बताया गया है कि 10% लोगों के पास, और जो मैं 10% कह रहा हूं ये विश्व के 10% है, 10% लोगों के पास 76% कैपिटल है, पूंजी है। सोच करके देखिए, टोटल का 76% इनके पास एक्युमुलेटेड है और आय का 52% ये अर्न करते हैं। नीचे के जो 50% लोग हैं, सोच करके देखिए, उनके पास केवल 2% पूंजी है और 8% आय है। कल्पना करके देखिए, केवल 2% पूंजी है। असमानता का आपके सामने इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। तो जब हम समृद्धि की बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि सभी लोग बड़े खुशहाल हों, खासकर भारत में। आप देखिए कि यह असमानता आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगी। तो ये जो थीम रखा गया, इसीलिए इसमें शब्द है लोग, इसके बाद है ग्रह यानी कि इस पृथ्वी को बचाना है। आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग ने क्या थ्रेट पैदा कर दी है, और इसके बाद है समृद्धि। अगर हम इसी तरीके से विकास के मॉडल को लेकर के चलेंगे कि कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं और दुनिया भर के जलवायु में परिवर्तन आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये पृथ्वी नामक ग्रह पर कुछ भी घटना घटित हो सकती है। और आपको मालूम है कि ठीक इसके बाद ही बकायदे ग्लासगो में सम्मेलन भी होने जा रहा है, जलवायु सम्मेलन। दोस्तों, ये जो मैं विस्तार के साथ आपको अभी मैंने बताने की कोशिश की है, इसका पर्पज है। पर्पज ये है कि जब आप पढ़ें तो आपको इसी तरह से चीजों को इंटीग्रेट करके पढ़ने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। केवल सुनिए मत, सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए उस पर विचार भी कीजिए। तब आप में यह क्षमता धीरे धीरे पैदा होगी कि कैसे आप अलग अलग जानकारियों को, अलग अलग सूचनाओं को, अलग अलग समाचारों को जोड़ करके अपने आंसर को बहुत अच्छा रूप दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वह करंट दिखाई देगा, एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं नहीं आप बिल्कुल अपने समय से पूरी तरह से परिचित हैं। तो दोस्तों, ये कुछ तीन जो समाचार थे उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम आते हैं आज के मुख्य विषय पर। प्री 2022 की तैयारी का ये पांचवां अंक है। एक दो बात मैं आज आप लोगों से और कहना चाहूंगा कि अगर सच में आप 2022 की तैयारी कर रहे हैं या 2023 की तैयारी कर रहे हैं या 25 की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, आपको अपना मीडियम चुन लेना चाहिए। उसके बारे में ज्यादा भ्रम में मत रहिए। जिस मीडियम के साथ आप इजी फील करते हैं वही मीडियम लीजिए, क्योंकि तभी आप चीजों को एक्सप्लेन कर सकेंगे। दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश में अभी विवाद चल रहा है, इस पर अभी मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन सैद्धांतिक रूप से मैं ये जरूर कहूंगा कि जिसमें आप अपने को बहुत ही इजी फील करते हैं आप उस मीडियम को चुनिए। और जब आप चुन लेते हैं तो आपको ध्यान होगा कि इससे पहले मैंने अखबार के बारे में बताया था कि उसी मीडियम में अखबार पढ़िए और उसी मीडियम की किताबें भी पढ़िए। हाँ, जहां तक ऑनलाइन कोर्स का सवाल है तो आप किसी भी मीडियम का ले सकते हैं। इंग्लिश वाले हिंदी का ले सकते हैं, हिंदी वाले इंग्लिश का ले सकते हैं, अगर आप में उतनी समझ है तो। क्योंकि देखिए, जो ऑनलाइन जो लेक्चर्स हैं या जो क्लास लेक्चर ही क्यों ना हो, उनका काम आपको फैक्ट बताना नहीं होता है, उनका काम आपको जो फैक्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन करना होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको लोग, ग्रह और समृद्धि को एक्सप्लेन किया, तो वो एक्सप्लेन करते हैं। तो आपके अंदर अगर समझ में आ रही है उस भाषा की बातें तो आपका काम चल जाएगा, फिर आप उसे अपनी भाषा में लिख सकते हैं जो आपका मीडियम है। इसी के साथ ही मैं अपने जो डेली ऑडियो लेक्चर के जो स्टूडेंट हैं, यहां तक कि जो ऑनलाइन के भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज जब आप मुझे मेल लिखें या किसी भी दूसरे को मेल लिखें या लेटर लिखें, खैर अब लेटर का तो जमाना खत्म ही हो गया, तो प्लीज उसी मीडियम में लिखिए, उसी मीडियम में लिखिए। ऐसा नहीं कि आप हिंदी मीडियम में तो आईएएस में बैठना चाहते हैं लेकिन आप मुझे या किसी को भी भेजते हैं तो आप बकायदे रोमन लिपि में रखते हैं, हम HUM, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ये आप अपने को पल्यूट कर रहे हैं, अपने को प्रदूषित कर रहे हैं भाषा के स्तर पर। जब आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो वहां आपकी स्पीड कम हो जाएगी, मात्राओं की आप गलतियां करेंगे और आपका दिमाग आपको तुरंत शब्द प्रोवाइड नहीं करेगा, आप वाक्य भी नहीं बना पाएंगे, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। प्लीज इसे नोट कर लीजिए और इसे अभी सुनने के बाद से ही लागू आपको कर देना चाहिए, अगर मेरी बातों पर थोड़ा सा भी विश्वास हो तो। दूसरी बात, आप चाहे छोटी सी ही बात क्यों न लिखे, छोटा सा ही मैसेज क्यों न लिख रहे हो, तो प्लीज आदत डालिए कि लिखने से पहले उस पर विचार कीजिए। विचार करने का मतलब है कि मुझे कौन कौन सी बातें लिखनी है, क्या क्या कहना है और फिर किस तरीके से कहना है, यानी कि सबसे पहले कौन सी बात कहनी है, इसके बाद फिर कौन सी बात करनी है, यानी कि आपके जो वक्तव्य हो, जो आपकी बातें हो, वो विचारपूर्ण होनी चाहिए। और जब एक बार आप लिख लेते हैं तो प्लीज आप उसे चेक भी करें, उसमें मात्राओं की गलतियां तो नहीं है, भाषा की गलतियां तो नहीं है, जो आप कहना चाह रहे थे वो अच्छी तरीके से कम्युनिकेट हो पाया है या नहीं हो पाया है, जो आप कहना चाह रहे थे उसमें से कोई बात छूट तो नहीं गई है, उसे चेक कीजिए। भले ही आपने दो लाइन का मैसेज ही क्यों ना लिखा हो, यह आपकी आदत होनी चाहिए। देखिए, सामने वाला पढ़ लेगा, समझ लेगा, उसको भले ही वो तरजीह न दे, लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात आपकी है कि भाषा पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, विचार पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, लिखने की शैली पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, आपकी स्पीड बेहतर होनी चाहिए। यह कैसे होगी, इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिए कि एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और सब कर लेंगे। प्लीज इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिए, ये सारी वे बातें हैं जो अभ्यास से सदती हैं। और जहां भी, जब भी आपको मौका मिलता हो कि आप अपने को एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे लिखकर एक्सप्रेस करने का मौका मिले, चाहे बोलकर अभिव्यक्त करने का मौका मिले, आप बिल्कुल संकोच मत कीजिए, थोड़े से बेशरम से ही बन जाइए और उस मौके का इस्तेमाल कीजिए। आप अपने को एक्सप्रेस कीजिए, आपको इंटरव्यू भी देना है और आपको मेंस भी देना है। देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूं, अगर आप क्वालिफाई करके सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो। ये बहुत छोटी छोटी बातें लग रही होंगी आपको, बचकानी बातें भी लग रही होंगी, लेकिन याद रखिए दोस्तों, माइकल एंजेलो जो महान चित्रकार हुए हैं, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बातें कही थी, कई खूबसूरत बातें कही थी, लेकिन एक जो सबसे खूबसूरत बात मुझे उनकी लगती है, मैंने उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स वेटिकन सिटी में देखी है रोम में, उन्होंने कहा था कि छोटी छोटी बातों से ही संपूर्णता आती है, छोटी छोटी बातों से ही संपूर्णता आती है, और संपूर्णता कोई छोटी बात नहीं है। आप इस भ्रम में मत रहिए कि ये सर तो बता रहे हैं तो बड़ी छोटी छोटी बातें हैं यार, इन पर कौन ध्यान देने की जरूरत है, हम वहां कर लेंगे, कभी आप संपूर्णता नहीं ला सकेंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपको लगातार भाषा को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। अगर आपको कोई शब्द अच्छे लग रहे हैं तो आप उन्हें नोट कर लें और इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अगर कोई वाक्य अच्छा लगा है तो उस वाक्य को नोट कर लें और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आप पाएंगे कि धीरे 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 आप में मैच्योरिटी आती चली जाएगी। और शब्द अच्छे की ही बात नहीं है, अगर कोई आपको नया शब्द मिल गया है तो उसे भी आप नोट करें, क्योंकि आपके शब्द जो हैं और आपकी जो भाषा है वो अपडेटेड होनी चाहिए। जैसे एक शब्द है सैड फिशिंग, आजकल ये शब्द खूब चल रहा है, सैड फिशिंग, क्या इसका अर्थ आप जानते हैं? अंग्रेजी का ही है लेकिन हिंदी में इसके पैरेलल कुछ नहीं है, मुझे तो नहीं मिला, अगर आपको जानकारी हो तो आप मुझे बताइएगा। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जो आजकल खूब प्रयोग में लाया जा रहा है और यह एक समस्या बन गई है। तो जब आप अपने राइटिंग में ऐसे शब्द लाएंगे तो डेफिनेटली लगेगा कि नहीं, आप भाषा के साथ भी ताल कदम ताल मिलाकर चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो मुझे आप सबसे कहनी थी। अगले सप्ताह से अब मैं तैयारी करने के जो सैद्धांतिक पक्ष होंगे, जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट होंगे और जो तैयारी करने के तरीके होंगे, उन पर बातें करना शुरू करूंगा। अंतिम वाक्य दो दिनों के लिए, और वह यह है कि प्लीज 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 दूसरों की बातें छोड़िए, आप अपने प्रति ही ईमानदार रहने की कोशिश कीजिए, कम से कम अपने प्रति तो हम ईमानदार रहें। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, अनामिका डे, गजेंद्र बिश्नोई बीकानेर राजस्थान से, और कुसुम जोशी राजसमंद राजस्थान से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, अब दो दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।